ओम शांति। आज हम कहाँ बैठे हुए हैं? हिस्ट्री हॉल में और पांडव वन में और संगम पर बगीचे में बैठे हैं। आज बाबा ने हम सब बच्चों को बगीचे में देखा, डबल बगीचा ये। और पिछले संडे में क्या था और उससे पिछले संडे कहाँ देखा था? पिछले संडे क्या था? सूक्ष्म बतन। और उससे पिछले संडे में स्वर्ग, जो सीन सीनरी है वहां भाई बहनों ने बनाई हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, झूलने वाले। तो वहां स्वर्ग की सीन सीनरियां थी और सूक्ष्म बतन। सूक्ष्म बतन के बाद हम पहुंचे बगीचे में। तो बाबा के अलग अलग महावाक्य समय समय पर हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, हमें चार्ज करते रहते हैं कुछ नया सोचने के लिए, कुछ क्रिएटिव माइंड बनने के लिए। ऐसे अलग अलग महावाक्य हमें जैसे एक सहज रूप से मिलते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, थोड़ा चिंतन करना पड़ता है। अगर एक बार ही केवल पढ़कर छोड़ दिया जाए तो फिर उसका उतना असर नहीं होता हमारे जीवन में। इसलिए महावाक्यों को तो बार 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 पढ़ना चाहिए, वो महावाक्य हमारे संस्कार बन जाएं, हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, हमारी विशेषता बन जाए। जो बाबा के संस्कार है वो ही हमारे नेचुरल वृत्ति बन जाए। तो इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य हैं, उनका कितना कदर करना चाहिए हम सबको। क्योंकि जब तक महावाक्यों को हम अपने दिल से नहीं लगाएंगे, नेचुरल नेचर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा योग भी सहज नहीं होगा। योग में मुश्किल होगा, भारी लगेगा, क्योंकि जो हमने संकल्प भर के रखे हैं पहले से वो योग से संबंधित नहीं है, वो तो सारे पुरानी दुनिया से संबंधित हैं, पुराने जन्मों से संबंधित हैं। तो उन संकल्पों से मुक्त होने के लिए नए संकल्पों को हमें अपने मन बुद्धि में भरने की आदत डालनी चाहिए, और लंबे समय का प्रयास करने के बाद ही ये आदत पड़ती है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार बाबा से बातें करने की प्रैक्टिस, मुरली के महावाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखने की आदत। तो हम नई आदतें कुछ डालेंगे तो हमारे संस्कारों, नए संस्कारों का निर्माण होगा, और नए संस्कार हमें ऊर्जावान बना के रखेंगे। क्योंकि ये जो संस्कार हैं ईश्वरीय संस्कार हैं, तो हम आसुरी संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपने से बात करनी है कि हम बाबा का बने हैं, तो बाबा का बनने के बाद बाबा की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, या वही पुरानी चाल है, पिछले जन्म की स्मृतियां ही बार बार हमको तंग करती रहती हैं, पुराने संस्कार ही हमारे पुरुषार्थ के लिए जैसे एक उलझन बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। तो हमें नए संस्कारों का निर्माण करना है। बाबा मुरली में कितने सारे टाइटल देते हैं, अगर उन टाइटलों को भी स्मृति में लाएं बार बार, उन पर थोड़ा चिंतन करने, उसकी थोड़ी अनुभूति करें, तो भी एक अलग नशा चढ़ा रहेगा। तो आज सबसे पहले आज के मुरली में बाबा ने कौन कौन से टाइटल दिए, कौन से टाइटल दिए? तुम बच्चे होली हंस हो, आज पवित्र आत्माएं हो, संपूर्ण पवित्र खुशबूदार फूल हो, और मास्टर आदिदेव हो, रूहे गुलाब हो, खुशबूदार फूल हो, होली हंस भी हो गया, होली हंस उड़ भी गया, हाँ जी, हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, प्रकृति जीत हो, प्रकृति पति भी हो, और संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो, रियल डायमंड हो, महान आत्माएं हो। महान आत्माएं कहाँ बोला था? वरदान में, हाँ, वरदान में महान आत्माएं। महान आत्मा बनने का आधार क्या है? पवित्रता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प की धारणा। तो ऐसे अनेक प्रकार के बाबा हमको टाइटल देते रहते हैं, अगर उन टाइटल को भी हम अपनी स्मृति में रखते हैं, बार बार दोहराते हैं, उनको लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, तो भी हमारे संस्कार नए संस्कार बनेंगे। तो थोड़ा सा एक अंदर में संतुष्टता का भाव जागृत होगा। अगर हम थोड़ा बहुत भी होमवर्क करते हैं तो भी हमारा आगे पुरुषार्थ का मार्ग आसान हो जाता है। अगर थोड़ा भी हम ध्यान नहीं देते हैं, मुरली सुनी और सारी की सारी मुरली भूल गए, तो सारे दिन की खुशी गायब हो जाएगी। भले योग किया, लेकिन योग में वो जौहर, वो शक्ति नहीं भरेगी, वो वाणी में ताकत नहीं आएगी, क्योंकि हमने बाबा के महावाक्य को नज़रअंदाज कर लिया। हाँ, थोड़ा बहुत सुन तो लिया, उसका तो बाबा कहते वर्षा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन वास्तव में वर्षा तो अभी संगमयुग का वर्षा मिलना चाहिए। सारे कल्प में सबसे बड़ा वर्षा संगमयुग का वर्षा है, जो हमको अभी अनुभव करना है। जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी हैं, सबसे ऊंचा जन्म तो हमारा ही ब्राह्मण जन्म है। जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म लेते में मैंने तुम्हारी बुद्धि में क्या वर दिया? श्रीमत वर दी। तो श्रीमत किसकी? भगवान की श्रीमत है। उसके संकल्पों के जो शक्ति है वो हमारी बुद्धि में भर गई। तो बाबा आले अनेक अलग अलग तरीके से हमको पुरुषार्थ करने की युक्तियां बताते रहते हैं। तो आज बाबा ने होली हंसों के बारे में क्या कहा? होली हंस अर्थात, हाँ, होली हंस अर्थात तैरने वाले और उड़ने वाले, उड़ने वाले अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, और तैरने वाले कहाँ पर? ज्ञान जल में, ज्ञान अमृत में जो तैरते रहते हैं। तो जो ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, ज्ञान का मनन करते रहते हैं, वो अर्थात वो तैर रहे हैं। और ज्ञान का मनन करेंगे तो हमारी स्थिति ऊंची होगी। अगर हम मनन नहीं करेंगे तो जो पहले से विचार भर के रखे हैं मन, उन्हीं में रमण करता रहेगा, तो स्थिति ऊंची कैसे होगी? इसलिए मनन करना बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा बाबा थोड़ा भी मनन करने के लिए इशारा देते हैं तो उस पर आगे हमको विस्तार करना है। होलियंस और होलियंस की क्या विशेषताएं होती है? बाबा ने तो दो बताई, और क्या विशेषताएं होती हैं? हाँ, होलियंस अर्थात सबके गुण ग्रहण करने वाला, कंकड़ पत्थर नहीं तो मोती चुगने वाला है। होलियंस कैसा होता, हंस कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद होता है वो, हाँ। तो सफेद अर्थात वो पवित्रता का प्रतीक है, और होलियंस उसके पंखों पर पानी नहीं ठहरता है ना, न्यारा प्यारा रहता हो। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम गर्गस्थ में रहते हो, न्यारे प्यारे रहो, तो वो वाली पुरानी बातें, परिवार के संस्कार, आपस में उलझने वाले संस्कार, वो हमको टच ना करें। आपसी टकराव, मन मुटाव, जो बाबा कहते हैं आप साक्षी स्थिति के आसन पर बैठे रहो। तो ऐसे होली हंसों की बाबा ने विशेषताएं देखी, तो प्रैक्टिकल में एक्सेप्ट करना है कि वास्तव में मैं ही वो होली हंस हूं, अर्थात निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन करने वाला, हमेशा ज्ञान अमृत का पान करने वाला, हमेशा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाला। ऊंची स्थिति में स्थित रहने के लिए जितने भी टाइटल हैं उन टाइटलों को बार बार बुद्धि में दोहराना है। कितने टाइटल अभी हमने पहले सभी ने सुनाए, तो वो टाइटलों को स्मृति में रहना है और उसमें स्थित हो जाना है और वो फील करना है, क्योंकि वो भगवान ने उन टाइटलों की स्मृति का तिलक हमारी मस्तक पर लगाया हुआ है। तो विजय का तिलक लगाया हुआ, वो सारे के सारे टाइटल तो हमारे अपने हैं, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी जायदाद है, मलकियत है, वो वर्षा है हमारी। तो अगर हम इस वर्षे को अपनी स्मृति में रखेंगे तो हमें अपनेपन की महसूसता होगी और वो सामर्थ्य वो शक्ति स्वयं में अनुभव करेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के बाबा हमको टाइटल देते रहते हैं। तो आज बाबा ने किसको देखा? रूहानी बगीचे के मालिक ने देखा। किसको देखा? रूह गुलाब को देखा। कहाँ देखा? डबल बगीचे में देखा। और इस बगीचे की क्या विशेषता थी? 1992 ओम शांति भवन 16 मार्च है ना, तो सभी वहीं चले जाओ कि ओम शांति भवन बड़ा सुंदर बगीचा सजा हुआ है और सामने बाबा बैठे हुए हैं और हम सभी उस सभा में बैठे हुए हैं और बाबा ये मुरली वहाँ बैठकर चला रहे हैं, जैसे बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। रूहे गुलाब अर्थात हम यहाँ रूहें चमक रही हैं, मस्तक मर बाबा को हमारी चमक दिखाई दे रही है और बाबा उस चमक के आधार पर हमारी विशेषताओं का विश्लेषण कर रहे हैं, हमारी विशेषताओं का विस्तार कर रहे हैं, हमारे सोमान को जागृत कर रहे हैं, है ना। अब इतने सारे बच्चे बाबा के सामने होते हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, अगर सभी इकट्ठे बाबा के सामने बोलें तो कौन क्या बोल रहा है पता नहीं चलेगा, लेकिन बाबा सबके संकल्पों को रीड करते हुए सबको संतुष्ट कर देते हैं। जिसको जो जो चाहिए होता है वो मुरली से वैसे बाबा के महावाक्यों से मुख से उच्चारित होता है, तो वो उनसे हमको क्या मिलता है? संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसा सुंदर बगीचा था वो, उस सुंदर बगीचे में हम कैसे फूल हैं, वैरायटी फूल हैं, है ना। तो बाबा ने अंतर बताया सत्यु का बगीचा और अभी का बगीचा, लेकिन अभी का बगीचा भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के बगीचे में स्वयं भगवान आते हैं। सत्य बगीचा सुंदर तो है लेकिन वहां भगवान नहीं आएगा, इसलिए इसकी विशेषता बहुत कलयुग नहीं बल्कि संगम युग बगीचा है। तो वास्तव में इस बगीचे का महत्व कम नहीं है, भले बाबा हमको बार बार याद करे कि तुम उस बगीचे को याद करो, उस बगीचे को याद करो, लेकिन जो इस बगीचे का महत्व है, जो इस बगीचे की शोभा है, जो सुंदरता है, जो इसका सौंदर्य है, वो सत्यु के बगीचे का नहीं है, क्योंकि वहां तो सृष्टि का मालिक ही नहीं है वहां, है ना। हम सब बच्चे भले सृष्टि के मालिक हैं, लेकिन जिस सृष्टि के मालिक ने नई सृष्टि का निर्माण किया, रचयिता जो है, वो हमारे साथ नहीं है। वहां से तो हम धीरे धीरे, हमारी सुंदरता धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो आत्मा पूरी सुंदर है, सर्वगुणों से संपन्न है, वहां से तो धीरे धीरे वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो इस संगम युग बगीचे की बहुत बड़ी महिमा है। तो हम इस बगीचे के फूल हैं। कैसे फूल हैं? खुशबूदार फूल है। तो बाबा ने हम सबको एक आसन दिया, जिस आसन पर बैठकर साधना करनी पड़ती है। कौन सा आसन दिया? अचल अडोल स्थिति का। और उस स्थिति, उस आसन पर बैठ के अचल अडोल बनेंगे, हाँ, साक्षी स्थिति का आसन। क्यों दिया आसन हम सबको? बाबा ने कहा ना, प्रकृति हलचल कर रही है, 10 खिलाड़ी हमारे सामने रख दिए, 10 बोले, फिर बाबा 20 भी बोलेंगे, ऐसे 10 ही रहेंगे। हैं तो बहुत हैं, हजारों हैं, आगे उनके वंशावली बहुत है सूक्ष्म रूप से। तो 10 खिलाड़ी उन वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आएंगे। तो बाबा ने हम सबको साक्षी स्थिति का आसन दिया। अगर इस उस आसन पर हम बैठे रहेंगे तो स्थिति हमारी अचल अडोल रहेगी। कौन कौन से 10 खिलाड़ी हैं? 5 प्रकृति के और 5 माया के 5 विकारों के हैं। तो ये खिलाड़ी हमेशा आते रहते हैं। किस किस रूप में आते हैं? प्रकृति के खिलाड़ी कैसे आते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो अग्नि तपता सूरज, है ना, तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो उस समय भी अगर हमारे मुख से निकला हाय बहुत गर्मी, हाय बहुत गर्मी, अर्थात हमने अपना आसन छोड़ दिया हुआ है, हम साक्षी स्थिति के आसन पर स्थित नहीं है। तो हम इसलिए हर मौसम में, हम चाहे वो प्रतिकूल है चाहे वो अनुकूल है, हर मौसम में हमारी स्थिति एक रस रहे। वो मौसम हमको प्रभावित ना करे कि आज बहुत बारिश है तो सेंटर में नहीं जाना है, है ना, आज सवेरे बहुत ठंड है तो आज उठना नहीं है, थोड़ा लेट उठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अर्थात हमने अपना आसन छोड़ दिया है। अगर हम आसन पर बैठे रहते हैं तो ये प्रकृति के तत्व भी हमको सहयोग देने के लिए बंधे हुए हैं, है ना। जैसा हम प्रकृति के तत्वों के बारे में सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशन उसके प्रत्युत्तर में हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम खराब सोचेंगे तो हमेशा हमको गर्मी लगती रहेगी, अगर अच्छा सोचेंगे तो चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हर मौसम में हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी। पुरुषार्थ हमारा प्रभावित नहीं होगा, बल्कि हर मौसम में हमारा पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। बाबा कहते हैं नवीनता, अर्थात हर समय हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना अलग अलग तरीके से, है ना। कुछ संडे तीन चार दिन पहले स्लोगन था ना, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो, समर्थ आत्मा बनो। समर्थ आत्मा वो है जो किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। तो हमको चाहे प्रकृति का कोई भी तत्व है, चाहे बारिश आ रही है, चाहे तूफान है, चाहे आंधी है, चाहे वो सर्दी है गर्मी है, उसके बारे में हमको ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। अगर हम वो चिंतन कर रहे हैं, जैसे हम प्रकृति के प्रति भी हमने एक संकुचित सोच रखी है, एक शुभ भावना नहीं है उसके प्रति, उसको भी जैसे दोष दे रहे हैं। तो अगर हमने अच्छे मौसम का फायदा लिया है तो अगर खराब आता भी है तो उसका भी फायदा लो, वो भी तो हमारा रचा हुआ है, क्योंकि हमारे संकल्पों का तो परिणाम है सारा। बाबा ने कहा ना, प्रकृति को भी सतो प्रधान कौन बनाता है, तुम बच्चे बनाते हो। तो प्रकृति का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। जितना हम प्रकृति के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देंगे, तो प्रकृति भी हमको सहयोग देगी और हमारी कई प्रकार की बीमारियों को भी खत्म कर देगी। और अगर बीमारियां होती भी हैं तो बीमारियां हमारे मन को डुलायमान नहीं करेंगी, अचल अडोल रखेंगी, स्थिर रहेंगे उसमें, साक्षी होकर उन बीमारियों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो प्रकृति के पांचों तत्वों से प्यार करना है। ये बॉडी क्या है, ये भी तो प्रकृति के पांच तत्व ना, इसके अंदर हम रहते हैं। अगर मैं सोचता रहूं मैं तो बीमार ही रहता हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है, तो संकल्प भी वैसे आते जाएंगे और हमें परिणाम भी वैसे मिलेंगे। बाबा ने कहा बलिहारी इस पुराने तन की, जो इस तन से भगवान से मिलन हुआ, इस तन में बैठ के आत्मा साधना कर रही है, इस तन में बैठकर आत्मा पूरे संसार को सतो प्रधान बनाने का साकाश दे रही है, इस तन में बैठ के आत्मा भगवान से मिलन आ रही है, इस तन में बैठकर आत्मा इन नयनों से भगवान से दृष्टि ले रही है, नजरों से निहाल हो रहे हैं। तो बलिहारी इस तन की है, साधारण नहीं है, देवताओं से भी उत्तम ये तन है, अमूल्य जीवन है ये, रियल डायमंड है ये। तो इस तन को भी हमको ज्यादा चाबुक नहीं लगाना है, है ना। बाबा कहते हैं ना, घोड़े को ज्यादा चाबुक लगाएंगे तो क्या होगा, घोड़ा भी तंग करेगा फिर, इसलिए इसको बड़े प्यार से इसकी संभाल करनी है। हाँ, इसके साथ इतनी अटैचमेंट भी नहीं हो जाए कि पूरा दिन हम इसी के बारे में सोचते रहे, न्यारा भी रहना है प्यारा भी रहना है, है ना। तो प्रकृति के पांच तत्व, तो उनसे हमको उनके साथ चलना सीखना है, ताकि वो ये तत्व भी हमारे मित्र बन जाएं, हमारे सहयोगी बन जाएं, समय पर हमारे ये हमें मदद कर सकें। और दूसरे पांच खिलाड़ी, माया के पांच खिलाड़ी, काम क्रोध व अहंकार, बाबा ने उनके लिए भी बोला है कि उनको भी परिवर्तन करो। किस रूप में, काम को किस रूप में परिवर्तन करो, हाँ, शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन करो। क्रोध को योग अग्नि में परिवर्तन कर दो, है ना। और लोभ को, लोभ को किस रूप में परिवर्तन करना है, हाँ, ज्ञान का लालच रख लो, है ना, इधर से भी सुन लो उधर से भी सुन लो, ज्यादा योग लगा लो, है ना, है, ज्ञान योग का लोभ करो, पुरुषार्थ के लालची बनो। और लोभ मोह अहंकार, मोह किसमें, बाबा से शुद्ध मोह होना चाहिए, और अहंकार किसमें, शुद्ध स्वाभिमान में, शुद्ध स्वमान में हमको स्थित रहना है। तो ऐसे प्रकृति के खेल बाबा कहते, तो प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति फायदा दे, लेकिन दोनों में हमें साक्षी स्थिति के आसन पर बैठकर हमें खेल देखना है। ये खेल है, खेल में क्या होता है, मनोरंजन है ना। बॉल आता है तो क्या होता है, हर एक का किक मारने का मन करता है, बाने का ना, कोई हार रहा है कोई जीत रहा है, दोनों को देख के मजा आता है ना। अगर भारत खेल रहा है किसी दूसरी कंट्री से तो दूसरे वाले हारे तभी तो मजा आता ना, और भारत जीते तो मजा, दोनों में मजा आ रहा है ना, तो ऐसे दोनों में खुशी खुशी है। तो ऐसे ही ये प्रकृति के माया के ये 10 खिलाड़ी हैं, ये तो खेलते रहेंगे, लेकिन दोनों को हमको साक्षी होके देखना है, चाहे हार है तब भी खुश, चाहे जीत है तो भी खुश। साक्षी स्थिति के आसन पर रहेंगे तो हम प्रभावित नहीं होंगे, किसी से ही प्रभावित नहीं होंगे, और साक्षी अवस्था में रहने से ही बाबा के नजदीक समीपता का अनुभव करेंगे। क्योंकि अगर हमने साक्षी दृष्टा का आसन छोड़ा तो हम इस संसार की बातों से प्रभावित हो जाएंगे, ये क्यों, ये ऐसे वैसे, और अनेक प्रकार की बातें हमारे मन को कमजोर कर देंगी, कई प्रकार के संशय के संकल्प लेकर आएंगी, हमारे निश्चय को डामाडोल कर देंगी, हमें जो पुरुषार्थ का सुख अनुभव करना चाहिए था उससे हम वंचित हो जाएंगे, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए था उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए इस आसन पर हमको स्थित रहना है। तो कोई भी हमको बाबा जो टाइटल देते हैं उसको पकड़ के फिर उसका विस्तार करना है, तो लिस्ट बनानी है, साक्षी स्थिति के आसन पर बैठने से हमको कितने फायदे होते हैं, है ना, कम से कम ऐसे 10 लिखो, 11 लिखो, 21 फायदे, ऐसी लिस्ट बनानी है। तो एक नया काम करेंगे, क्रिएटिव माइंड होगा तो हमको रस बैठेगा, ज्ञान सुनने में सुनाने में रस बैठेगा, नहीं तो वो पुरानी ढर्रे पर ही चलते रहेंगे, वो उसी जो पुरानी परंपराएं बनी है उसी पर चलते रहने से मन कभी कभी बोर भी हो जाता है। तो नए नए तरीके से हमको मुरली को याद रखने का तरीका सीखना है और वो पॉइंट हमारे अपने बन जाएं। तो कौन सा आसन हमेशा रखना है जिस पर हमको बैठे रहना है, साक्षी स्थिति, और साधना भी आसन पर बैठकर ही होती है। तो हमेशा हमको ये आसन, जैसे साक्षी स्थिति का आसन है, मेरा वृत्ति सिंहासन साक्षी स्थिति का आसन है, मैं आत्मा इस पर विराजमान हूं, है ना, और साक्षी होकर देख रही हूं हर चीज को, चाहे वो अपने ही पुराने संस्कार है उनको भी साक्षी होकर देखना है, उनसे ही प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि उनसे तो हम दूर जा चुके हुए हैं, वो तो जैसे बहुत पीछे रह गए हैं, भले हमको धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं अपने ही संस्कार, लेकिन साक्षी होकर देखना है जिनको तो हम छोड़ चुके हुए हैं, भले वो हमारे पास आने की कोशिश करें लेकिन हम अपने ही पुराने संस्कारों से बहुत दूर जा चुके हुए हैं, इसलिए वो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आसन पर स्थित हैं और वो संस्कार नीचे हैं एकदम, क्योंकि हमारा नया जीवन है और नई स्मृतियां हैं, नए संकल्प हैं, नई सोच है। तो हमको हमेशा साक्षी स्थिति के आसन पर बैठे रहना है और ये खेल देखते रहना है कि सारे संसार का से खेल चल रहा है ना। ड्रामा में क्या होता है, अलग अलग एक्टर होते हैं, अगर ड्रामा में सभी एक्टर जो है हीरो बन जाएं तो अच्छा लगेगा नहीं, उसमें कॉमेडियन भी चाहिए, उसमें विलेन भी चाहिए, हर चीज के चाहिए, तभी तो उसकी शोभा होती है। तो ये भी ड्रामा सृष्टि नाटक चल रहा है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हाँ, इसमें हमें सबके प्रति वो शुभ भावना शुभकामना रखनी है, क्योंकि बाबा कहते तुम हो हीरो पार्टधारी, हम विश्व के रंगमंच पर खड़े हैं, स्टेज पर खड़े हैं, तो हम सबके ऊपर सबकी नजरें हैं। बाबा कहते हैं जो कर्म तुम करेंगे तुमको देख के दूसरे करेंगे, जो संकल्प तुम बच्चे करेंगे तुम बच्चों के संकल्पों से ही दूसरा संकल्प करेंगे, तुम्हारे संकल्प कितने शक्तिशाली होने चाहिए। तो हम इस संसार के हीरो एक्टर हैं, हीरो पार्टधारी हैं, इतनी महानता है, इतने ऊंचे आसन पर बाबा ने हमको बिठा के रखा हुआ है। तो ये साक्षी स्थिति का आसन और होलियंस की विशेषताएं। तीसरी बात क्या बताई बाबा ने, हाँ, जलाना भी, उससे पहले ये बगीचा कैसा है, वैरायटी बगीचा है। इस बगीचे में क्या है, बाप के संग का रंग लग गया है। देखो, भगवान के संग का रंग लग गया वो कितनी बड़ी बात है। संसार में अगर छोटा मोटा भी कोई मिनिस्टर होता है उसके साथ में जो व्यक्ति रहता है तो उसको भी अपना अभिमान रहता है, उसको अपना नशा रहता है। तो हमारे साथ तो स्वयं भगवान चल के हमारे पास ही आ गया, हमको भी शुद्ध नशा है, उसके संग का रंग लग गया, और उसका संग जो रंग लगा क्या क्या हुआ उसे, फिर उसके संग का रंग लगने से क्या क्या हो गया। बाबा कहते तुम्हारा रंग बदल गया, रूप भी बदल गया, ये जो वाइट कपड़े पहले इतने पहनते रेगुलर, हाँ तो आपने क्या बोला, कौन मर गया फिर कहना मरा नहीं, अभी मारने जा रहे हैं तो बाबा कहते तुम्हारा रंग भी बदल गया, रूप भी बदल गया, कितने श्वेत वस्त्रधारी हंस बन गए, होली हंस बन गए, है ना। आप कहीं भी जाते हैं, अगर 100 लोग रंगीन कपड़ों वाले जा रहे और बीच में एक व्हाइट वाला हो, कैसा लगता है? एकदम फरिश्ता लगता है, होली हंस जैसे लगता है ना। कई बार यहाँ भी आते हैं तो जब अपने कोई ऐसा नया कोई बीके हो और यहाँ सभी श्वेत वस्त्र पहन के बैठे हैं और बीच में एक काले वस्त्र वाला बैठ जाए तो बाद में अपने आप ही शर्मिंदा हो जाता है कि मैं तो जैसे बगुला लग रहा हूँ बीच में, है ना। तो बाबा ने हमारा कैसे, कितना श्वेत वस्त्र में, इस वस्त्र में कितनी शांति है, कितनी रूहानियत है, इसमें कितनी अलौकिकता है, इसमें प्योरिटी के वाइब्रेशन भरे हुए हैं। शांति का प्रतीक है ये, और पुरानी दुनिया से जीते जी मरने का प्रतीक है ये, है ना। क्योंकि लास्ट में जब राम नाम सत्य होता तो क्या होता है, शरीर पर तो सफेद ही कपड़ा डालते हैं ना। हाँ, तो इस ये भी लिखना है, एक लिस्ट ये बनानी है कि सफेद कपड़े के क्या क्या लक्षण है, क्यों हम पहनते हैं, इसके कितने फायदे हैं, बाबा ने हमको सफेद कपड़ा ही क्यों पहनाया, इसकी बात लिख सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जन्मता तब भी सफेद, तो हमको तो पता नहीं अभी। हाँ सफेद पहनाते हैं, तो सफेद कपड़े के कितने महत्व हैं, ये हमारा ड्रेस है, डिसिप्लिन है। हाँ, दुनिया में तो विधवा भी पहनती हैं। तो बाबा कहते हैं सफेद में सातों रंग समाये हुए हैं ये, और ये सफेद जो है गर्मी से बचाता भी है ये, है ना। आप कई मंदिरों में हमने जाके देखा उसमें सफेद रंग है, तो संगमरमर पर इस तरह पांव रखेंगे तो गर्म लगे, और सफेद रंग पर रखेंगे तो, दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे आप गर्मी में देखेंगे तो वहां ऐसे अनुभव होता है। तो सफेद रंग हमें शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, तो ये भी हमारा ड्रेस है ये। तो जो छोटे छोटे नियम मर्यादाएं हैं ये वास्ते में हमारी सुरक्षा कवच हैं। ये बैज लगाया हुआ है, बैज भी बाबा क्या कहते हैं, हमेशा लगा के रखो, क्योंकि बैज के बहुत सारे फायदे हैं। कितने फायदे हैं इसके, इससे अपने आप सेवा हो जाती है, और इससे क्या होता है, अगर कहीं हमारा स्वभाव संस्कार थोड़ा गड़बड़ा है तो बैज दे के लगता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर लोग बैज उतार के फिर अपना भड़ास निकाल लेते हैं कोई कोई। तो बैज हमको सुरक्षित करता है ना। इस बैज में क्या क्या समाया हुआ है, बरसा समाया हुआ है इसमें। बाबा कहता है बैज दे के तुम सर्विस कर सकते हो, किसी को समझाने लग जाओ, कोई पूछेगा क्या लगाया हुआ है, ये हमको मेडल मिला हुआ है। आप देखेंगे जब कोई नए नए आते हैं, ज्ञान में नए होता है, तो उनको बैज लेने की कितनी उत्सुकता होती है, हमको ये बैज दे दो प्लीज, पहले बैज की डिमांड होती है। तो कितना इसमें आकर्षण है, क्योंकि इसमें परमात्म शक्तियां भरी हुई हैं, परमात्म जादू भरा हुआ है, इसमें परमात्म प्यार भरा हुआ है, परमात्म प्यार प्रेम से भरपूर है, क्योंकि बनवाया किसने है, ये स्वयं भगवान ने बैज बनाए हुए हैं, किसी मनुष्य की सोच थोड़ी नहीं है ये, तो बाबा के द्वारा बनाए गए हैं बैज हैं ये, तो स्वयं भगवान ने हमको ये मेडल लगा दिया। इस मेडल को लगाने के लोग तरसते हैं, और बाबा ने कहा तुम बच्चे रोज इस मेडल को पहन के रखो। तो हर एक चीज का महत्व है, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो बैज है, चाहे वो कॉपी पेंसिल है, ये भी साधारण नहीं है कॉपी पेंसिल भी। बाबा ने कहा अच्छे स्टूडेंट वो हैं जो जिनके कच्छ में कुर्म होती है, अर्थात बगल में किताब होती है। तो जिस जिसको भी लिखने पढ़ने आता ना, कॉपी पेंसिल तो जरूर होनी चाहिए, है ना। किस किस को नहीं आता लिखने पढ़ने, हाथ खड़ा करो, वो ही सिखा देगा बाबा। अगर पढ़ने को सिखाया तो लिखने को जरूर सिखाएगा। तो कल से शुरू कर देना आप लिखना, है ना। उसमें लिखने में क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारी सारी कर्मेंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन जो इधर उधर भटकता है उससे हम बच जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। अगर केवल हम सुनते हैं तो सुनते सुनते कहीं ध्यान जा भी सकता है। अगर हम नीचे लिख रहे हैं तो हमारी गर्दन सीधी कॉपी पर होगी, आंखें सीधी कॉपी पर गड़ी होंगी, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है। और बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं कि ये मेरा गोल्ड स्टूडेंट बच्चा है, तो गोल्ड स्टूडेंट अर्थात उमंग उत्साह वाला जीवन, ठीक है। तो कहाँ थे हम, होली अंश, ये सफेद रंग से कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, है। तो हमारा ये सफेद रंग भी बदल गया, और क्या बदल गया, रूप भी बदल गया। रूप कैसा हो गया हमारा, फरिश्ता रूप हो गया, और हंसमुख हो गया, हाँ खुशनुमा हर्षित मुख खुशनुमा रूप हो गया, और अलौकिक हो गया, रूहानियत वाला हो गया, है जी, ज्योति बिंदु रूप हो गया। और बाबा कहते तुम हो रूप संत, रूप संत अर्थात ज्ञानी और योगी, ज्ञानी किसको कहेंगे? बसंत को, जिसके मुख से रतन झरते रहते हैं, और रूप अर्थात योग। तो हमारा ये ज्ञानी योगी जीवन है, तो हमारा रूप भी बदल गया है ना। वैसे भी ज्ञान में आने के बाद सबके चेहरे बदल ही जाते हैं, और यहां आकर तो देखते हैं कोई कोई बाहर वाले थे तो सभी भाई बोला एक जैसे लगते हैं इधर, है ना। सभी स्फेद स्फेद दिखते हैं तो सभी एक जैसे लगते हैं। तो बाबा ने हमारा रंग भी बदल लिया, रूप भी बदल दिया। और तीसरी चीज नंबरवार खुशबू, उसमें नंबरवार है। कौन सी खुशबू? पवित्रता की। कौन सी पवित्रता से पहले भी एक शब्द है, हाँ, संपूर्ण पवित्रता की खुशबू, इसमें नंबरवार है। बाबा ने कहा केवल तन से ब्रह्मचारी रहना है यही पवित्रता नहीं है, मन से ब्रह्मचारी। मन से ब्रह्मचारी अर्थात कहीं हमारा लगाव ना हो, मन कहीं कहीं हमारा बंद ना जाए, कोई आकर्षण में फंस ना जाए, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव साधनों के बारे में हमारा वो मन वहां अटका ना रहे। तो मन भी सोने के हिरण की तरह, तो मन भी एकदम, मन में भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य। और तीसरा संस्कारों में भी, हमारे संस्कार जो पुरानी स्मृतियों से जो हम मर चुके हैं, मर्जी व जन्म है, तो हमें नए संस्कारों का पोषण करना है, नए संकल्पों का पोषण करना है। नए संकल्प जो बाबा के महावाक्य हमको रोज सुनने को मिलते हैं, ये हमारे नए संकल्प हैं। उसमें नए नए संकल्प ढूंढ के हमें उन्हें अपने बुद्धि में रखना है, उसका पोषण करना है, वही संकल्प हमारे संस्कार बनेंगे। और फिर संबंधों में भी, संबंधों में भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य। तो तन मन संस्कार संबंध सब में संपूर्ण ब्रह्मचर्य, इसको कहेंगे खुशबूदार, संपूर्ण पवित्रता। तो रंग रूप खुशबू, बगीचे में बाबा ने ये देखी, तो ये हमारे में अपने आप को चेक करना है कि हमारा रंग बदल गया या गिरगिट की तरह रंग तो नहीं बदल रहे कहीं कहीं, अंदर बाहर दूसरा कुछ। बाबा कहते हैं जो अंदर एक है बाहर दूसरा, उसको क्या कहते हैं? खौफनाक, है ना, याद है सबको। तो ये तीसरी बात। और बाबा वर्षा भी सबको देते हैं, लेकिन हमको तीन ट्रिपल वर्षा मिलता है, संसार की आत्माओं को सिंगल वर्षा मिलता है, हमें ट्रिपल वर्षा मिलता है। कौन सा? दो हो गए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ, एक है संगमयुगी वर्षा, दूसरा मुक्ति धाम का वर्षा, तीसरा जीवन मुक्ति का वर्षा है। तो संगमयुग पर सबसे बड़ा वर्षा कौन सा है? संगमयुग का वर्षा है। स्वयं ज्ञान दाता ही मिल गया, उसी को पकड़ लिया, है ना। जैसे राजा के पास चीज लेने के लिए कोई जाता है, तो एक बच्ची ने जाके राजा को ही पकड़ लिया, अब राजा ही उसका हो गया, तो सारा राज्य ही उसी का हो गया, तो बाबा ही हमारा अपना ही हो गया। तो बाबा की जो वर्षा संगमयुगी वर्षा, ज्ञान गुण शक्तियां खजाने खुशी पवित्रता दुआएं, ये सब इतना बड़ा वर्षा है जो हमको मिल गया है। तो ये कितना बड़ा वर्षा है, ये संसार की आत्मा को मिला है वर्षा। तो कितने खुश नसीब है हम आत्माएं, कितना हमारा भाग्य है, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो स्वयं भगवान अपना वर्षा लुटाने के लिए हमारे पास आ गया है। उसने अपनी खान खोल दी, खजानों की खान खोल दी। तो कितना हमारा भाग्य है कि ट्रिपल वर्षा हमको मिलता है। और परमधाम में भी कहां रहेंगे बाबा? बाबा के समीप में रहेंगे। कितने समीप रहेंगे? कितना नजदीक? कंबाइंड रहेंगे। हाँ, तो वहां भी हम बाबा के नजदीक रहेंगे, लेकिन वहां तो महसूस होगा कुछ, क्या पता होगा कौन बाजू में बैठा हुआ है। पता चल जाएगा। पता तो अभी अभी पता चल सकता है ना, तो उसमें तो महसूसता नहीं है, वो तो जैसे सोए हुए हैं हम सुषुप्त अवस्था में। तो उस भेंट में देखेंगे तो अभी का कितना बड़ा वर्षा है कि बाबा के साथ का अनुभव करें। तो ये योग में महसूस करना है कि मैं बाबा के बिल्कुल समीप बैठा हूं, जैसे दूरियां समाप्त होगी, जैसे बताया ना बहन जी ने कंबाइंड रूप की सेवा, कंबाइंड रूप में हम जैसे बाबा के साथ बैठे हुए हैं, तो महसूस करना है वो अभी, है ना। इस ज्ञान को योग में कन्वर्ट कर देना है, उसको महसूस करना है, अभी से अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, ब्रुक्टी सिंहासन पर मैं और बाबा इकट्ठे बैठे हुए हैं, है ना। उसकी सारी शक्तियां और मेरी शक्तियां जैसे एक समान हो गई हैं, वो सारी शक्तियां उसकी जैसे मेरी हो गई हैं, और पूरा परिवर्तन हो चुका हुआ है, मेरे संकल्पों का, मेरी दृष्टि का, मेरे बोल का, मेरी वृत्ति का, मेरे कर्मों का, जो उसके हैं वो ही मेरे हैं। तो उसको महसूस करना है। और क्या कहा बाबा ने? तीसरा वर्षा कौन सा है? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में क्या मिलेगा? 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, है ना। तो कौन सी भाषा लेनी है वहां, दूर वाली नजदीक वाली? जितना हम यहां अपने कर्मेंद्र प्रशासन करना सीखेंगे, स्वराज्य अधिकारी, जितनी हमारी शक्तिशाली स्थिति होगी उतना भी हम नजदीक में रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के समीप रहेंगे। अर्थात जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार हैं उन संस्कारों के समान हमारे संस्कार होंगे तो ही हम वहां बाबा के समीप रहेंगे, रॉयल फैमिली के समीप में रहेंगे। तो ये तीन प्रकार के वर्षे बाबा ने हम सब बच्चों को दिए। बाबा ने कहा भले कोई गाली भी देता है लेकिन फिर भी वर्षा तो देना ही है, बिना वर्षे दिए रह नहीं सकते, क्योंकि बाप अर्थात वर्षा देना ही निश्चित ही है वो। तो बाबा ने देखो कितना उपकार है, भले कोई बच्चा कैसा भी है लेकिन बाबा फिर भी हर बच्चे में क्या रखते हैं, शुभ उम्मीद रखते हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल दिया, अगर किसी को कोई बीमारी होती है, थोड़ी बीमारी होती है तो जल्दी ठीक हो जाता है, अगर बड़ी बीमारी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन माँ बाप कोई होप लेस थोड़ा नहीं होते हैं, उस पर होप रखते हैं, आश रखते हैं कि ठीक हो जाएंगे बच्चे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, है ना। आज तो ढीले डाले हैं, कल क्या हो जाएंगे, क्या बताया था आज मुरली में, आज भले पुरुषार्थ में थोड़े ढीले डाले हैं लेकिन कल को ये डैश हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, था ना मुरली में। भले आज ढीले डाले हैं लेकिन बाबा को भी उम्मीद है हम बच्चों के ऊपर, कितनी बड़ी बात है कि भगवान कभी दिल शिकस्त नहीं होता है, बताया ना बाबा ने कि बाप कभी दिल शिकस्त नहीं होते हैं, बाप को बच्चों पर शुभ उम्मीद है ही है। और हमारा जीवन भी देखो, संसार के लोग भी क्या उम्मीदों पर जीते हैं, कोई भी बड़े बिजनेसमैन क्या है बिजनेस शुरू करते तो उम्मीदों पर जीते हैं ना, सारा संसार उम्मीदों पर ही चलता है। तो भगवान हमारे प्रति इतनी शुभ उम्मीद रखते हैं कि आज भले ढीले डाले हैं लेकिन कल को ये बच्चे बड़े होशियार हो जाएंगे, है ना। तो ये शुभ उम्मीदें बाबा की हम सब बच्चों के प्रति है। और फिर होली के बाबा ने क्या रंग लगाए, होली की कितनी बातें बताई, होली अर्थात एक तो होली अर्थात बीती सो बीती, और दूसरा होली अर्थात मैं बाप की होली, और तीसरा अर्थात होली अर्थात हाँ संपूर्ण पवित्रता, होली पवित्र बनेंगे, और चौथा होली अर्थात, होली अर्थात रंग लगाना, जलाना मनाना, जलाना और मनाना, और पांचवा होली अर्थात, बाबा ने चार बताए तो चार थोड़ा कुछ आगे भी तो खींचन। तो ऐसे बाबा कहते हैं होली अर्थात बीती सो बीती अर्थात फुल स्टॉप, लेकिन बच्चे चलते चलते एक गलती कर देते, कौन सी है, हाँ क्वेश्चन मार्क भी क्यों लगता है, क्योंकि वो फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, स्टॉप तो लगाते लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, फिर क्या होता है क्वेश्चन लग मार्क। तपस्या के चार्ट को बाबा ने देखा, तपस्या के चार्ट में कमी का कारण एकमात्र कारण कि बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या क्योंकि क्वेश्चन टेढ़े मार्क, ये क्यों ऐसे कर रहा है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, तो ऐसे टेढ़ा रास्ता ले लेते हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसलिए फुल स्टॉप लगाना। जो बीत गया सो बीत गया, हमें भी अपनी लाइफ में देखना, रोज रात को सारे दिन में जो बीत गया ना भूल जाने का, उसको अच्छा भी बीता उसको भी भूल जाओ, जो खराब भी बीता उसको भी भूल जाओ, क्योंकि उसको चिंतन करने से फायदा कोई नहीं है, इसलिए बाबा ने तो हमको फुल स्टॉप लगाने की मात्रा दी हुई है। स्वयं भगवान ने हम सबको ऐसे मेथड बता दिए, तरीके बता दिए जिससे हमारी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा को पता है बच्चे युद्ध के मैदान में है, माया तो आएगी आएगी, खिलाड़ी के रूप में प्रकृति भी आएगी वो भी आएगी, लेकिन इस खेल को देखे एंजॉय करना, तो एंजॉयमेंट भी कब कर सकेंगे, जब हम फुल स्टॉप की मात्रा लगाएंगे, और वो भी समय पर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारी बातें चिंतन करने के बाद लास्ट में सोचा ठीक है छोड़ दो अब जो हो गया हो गया, लेकिन इतना तो चिंतन कर लिया ना, वो तो हमारे सारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो फुल स्टॉप माना बिंदी माना बिंदी। तो तपस्या के चार्ट में हमको ये देखना, हमको ये गलती नहीं करनी है, जो बातें बीत गई योग में बैठते हैं सारी बातें दरवाजे से बाहर छोड़ के आ जाने का, जला देना उनको। बाबा ने कहा जलाने जलाएंगे तो ही होली मना पाएंगे, अगर जलाएंगे नहीं तो मौज नहीं मना पाएंगे। होली अर्थात मौज मनाना, होली अर्थात अपनी कमजोरियों को भस्म करना, कमजोरियों को भस्म किए बिना ब्राह्मण जीवन में मौज अनुभव नहीं होगी। इसलिए जो बात बीत गई वो बीत गई, उसको चिंतन नहीं करने का, भले कैसे भी हो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्योंकि अभी तो हमको हमारा हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ लिया, उसने हमारी जिम्मेवारी ले ली है, हमारे जीवन का सारा उसने वो शत्रछाया बनकर हमारी पालना कर रहा है, तो हमको पुरानी बातें बीती बातें छोड़ दी तो छोड़ दी, झंझट खत्म। और क्या कहा बाबा ने मुरली में, बरसा भी सबको मिलेगा और कंबाइंड सेवा। कंबाइंड सेवा कैसे? स्व की सेवा, स्वस्थिति अच्छी होगी तो हम दूसरों को परिस्थितियों से निकालने की सेवा कर सकते हैं। अगर हमारी स्वयं की स्थिति अच्छी नहीं है तो दूसरों को परिस्थितियों से कैसे निकालेंगे? इसलिए स्व सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा साथ साथ होनी चाहिए, कंबाइंड सेवा। जैसे बाबा कहते हैं आप और बाप ऐसे कंबाइंड हो जाओ जो सेवा अपने आप होती रहे। अगर हम सिंगल सेवा करते हैं तो मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा, इसलिए कंबाइंड सेवा करेंगे तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा मिलेगी। और व्रत कौन सा बाबा ने कराया? दृढ़ संकल्प का व्रत। कौन सा? पवित्रता का व्रत और भाई भाई की वृत्ति का व्रत। इससे क्या बन जाएंगे? ये महान आत्मा बनने का आधार है। अगर जब हमारी वृत्ति चंचल हो रही है ना, तो हम कभी नीचे कभी ऊपर, कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं, तो हम महान कैसे बनेंगे? इसलिए एक दृढ़ता, जो भी हमारी कमजोरियां हैं, कोई भी एक कमजोरी ऐसी होती है जिससे हम छूट नहीं पाते हैं, तो थोड़ा दृढ़ता से उस पर काम करना है। और लंबा टारगेट नहीं करना कि आज से कमजोरी खत्म, नहीं, केवल आज के दिन के लिए सोचना है कि आज ये कमजोरी मेरे पास फटक नहीं सकती है, या आज आधे दिन के लिए सोच लो। पहले जो आधे दिन की विजय मिलेगी, वो आधे दिन की विजय आधे दिन के लिए हमको चलने के लिए शक्तिशाली बना देगी, समर्थ बना देगी, ताकतवर बना देगी। अगर हम लंबा संकल्प लेते हैं कि आज से मैं संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त, तो व्यर्थ का अंबार हमारे सामने इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा किसी न किसी रूप में, चाहे वो दोस्तों के रूप में आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में आएगा, डिजिटल माया के रूप में आएगा, वो आएगा आएगा जरूर, पेपर आता ही आता है ना। हाँ, सेंटर से घर पहुंचने तक अनेक पेपर आ जाते हैं कदम कदम पर पेपर ही है। ब्राह्मण जीवनी अर्थात पेपरों मुसीबत मोली है ना? ले लिया वो माता जी बोल रहे हाँ हाँ, पहले नहीं आते थे अब आते हैं। तो अगर जिंदगी में मुसीबतें आ रही हैं अर्थात आप ठीक ठाक चल रहे हैं, हाँ आगे बढ़ रहे हैं, हाँ देखो बाबा ने कितना ज्ञान समझा दिया, तो अब ये सारी बातें लिखना भी शुरू कर देना आप कल से। देखो बाबा ने कितना होशियार बना दिया, पहले सारी बातें पता थी आपको? पहले इतना मुख चलता था आपका? अभी देखो माता जी लिखना नहीं जानते, और इस क्लास में सबसे ज्यादा आंसर किसने दिए? हाँ, तो बाबा ने कितना होशियार बना दिया। हाँ तो बताओ, देखो बाबा की कितनी कमाल है ना, माता जी के दिल ताली बजाओ बाबा की कितनी कमाल है, देखो प्रैक्टिकल में है कि नहीं है। फिर ये कोई कह नहीं सकता कि बाबा मदद नहीं करता, देखो कैसे मदद करने के लिए बताओ। हाँ बाबा को अपने आंचल में लेकर घूमते हैं वो, है ना। तो जो भी बाबा तो मदद करने के लिए बंधा हुआ है, मदद का सागर है, हाँ जी। हाँ, चलना सिखा दिया, उड़ना सिखा दिया, बोलना भी सिखा दिया, इतना बोलना सिखा दिया कि फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो रहा है अभी हाँ सही बात है बाबा भी मुस्कुराता होता कि मैं कुछ ज्यादा ही मदद कर दी है माता जी को है ना। तो बाबा की कितनी कमाल है, बाबा ने क्या बना दिया आपको? रियल डायमंड बना दिया है ना। हाँ, तो ऐसे देखो माताओं की बाबा कितनी महिमा करते हैं, है ना। परसों के मूल्य में था ना, तुम सब माताएं हो, शिव शक्तियां हो, है ना। तो माताओं को क्या कहा जाता है? वंदे मातरम, भारत माता की जय, शिव शक्ति पांडव सेना। तो ऐसे बाबा ने कितने सारी बातें हम सबको सिखा सिखा के क्या से क्या बना दिया। कभी सोचा ही था माता जी ने आप जिंदगी में कि ऐसे भी दिन आएंगे कि ऐसा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा? देखो है ना, ये बुद्धि का बर्तन कितना शुद्ध बना दिया। पहले ऐसी बातें कहाँ ठहरती होंगी, कभी मन में नहीं, कभी चित्त में नहीं कि ऐसे संकल्प भी बुद्धि में आएंगे। अब देखो माता जी लिखते भी नहीं लेकिन हम पढ़ते हैं, केवल कैसे याद रहेगा सारा? तो मदद है बाबा की ना। हाँ, तो ये सोने का बर्तन क्या आपका? तो हीरे का लग रहा है हाँ हीरे का बर्तन लग रहा है अभी आपका, इसलिए तो सारे ज्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा ही माल ठहर गया आपकी बुद्धि में तो बाबा की कितनी हमारे पर कृपा, देखो है ना मजा। तो देखो कितने प्रैक्टिकल में वो चेहरे में दिखाई देता है जिसको याद रहता है ज्ञान, वो प्रैक्टिकल में हमारे चेहरे अपने अपने आप खुशी के रूप में वो दिखाई देता है। तो कितनी सारी बाबा बातें बताते रहते हैं हमको, तो बाबा कहते हैं सारे विश्व में अपनी पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाते रहो तो रियल डायमंड बन जाएंगे। और क्या आज की मुरली में कहा बाबा ने, हाँ चार प्रकार के बच्चे देखे, कौन कौन से बाबा ने कहा, भले बच्चे कोई नटखट भी हैं, कोई गंभीर भी हैं, कोई रमणीक भी हैं और कोई फास्ट नेचर के भी हैं, लेकिन फिर भी धीरे 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 सब ठीक हो जाएंगे। तो बाबा को हमेशा हमारे पर शुभ उम्मीदें रहती हैं, तो क्योंकि वैरायटी फूलों का बगीचा है, तो इस बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं, कोई कैसा है, सभी एक जैसे तो भी बगीचा अच्छा नहीं लगता है। तो रंग बिरंगे फूलों का बगीचा है, वैरायटी स्वभाव संस्कार हैं, सबके अपने वैरायटी हिसाब किताब हैं, वैरायटी संकल्प हैं, वैरायटी सोच है, तो ऐसे रंग बिरंगा बगीचा है। एक ही गुलदस्ते में सारे फूल हो तो कैसे लगेगा, अलग अलग फूल हैं। हाँ जी, हाँ पत्ते भी चाहिए, नहीं वो पत्ते भी चाहिए तभी तो उसमें शोभा भी दिखाई देगी ना, हाँ पत्ते भी चाहिए। तो कितनी सारी बातें बताई बाबा ने आज। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी आज की मुरली से, एक तो साक्षी दृष्टा की स्थिति के आसन पर स्थित रहना है, और ये खेल हमको देखना है, अपने जीवन को भी साक्षी होकर देखना है, अपने जीवन से भी डिटैच रहने का तरीका है ना। जैसे हम जैसे बैठे हैं अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और जो भी हमारा जीवन बीत गया या आज का जीवन केवल, तो हम साक्षी होकर मैं देख रहा हूँ उसको कि कहाँ कहाँ सारे दिन में मेरे से गलतियाँ हुई, वो गलतियों का प्रभाव रियलाइजेशन किया हमने, लेकिन उससे हमारा मन बुद्धि प्रभावित नहीं होगा, उनसे हमको छूटने की बाबा युक्ति बताएगा, उनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो साक्षी होकर अपने जीवन को भी देखना है। और क्या बाबा ने बताया, वर्षा तो हर एक आत्मा को मिला है, मिलेगा चाहे कोई भी है ना, चाहे बीके या चाहे नॉन बीके, वर्षा तो मिलेगा मिलेगा, कौन सा, उनको मुक्ति का और हमको तीन वर्षे मिलेंगे, लेकिन हमको भी शुभ उम्मीद रखनी है, उनको भी सारे ही मिल जाए बेचारे, है ना, क्योंकि हम तरस आना चाहिए। और क्या कहा बाबा ने, होली हंस हो तुम तैरने वाले, कहाँ तैरना है, ज्ञान अमृत में डूबे रहना है, बाहर निकलने ना ही नहीं, बाहर निकलेंगे तो माया खींच लेगी, और ऊंची स्थिति पर स्थित रहना है, ऊंची स्थिति पर स्थित रहना अर्थात उड़ने वाले हैं। तो हमेशा हमको मन को परम धाम में उड़ाते रहना है, सूक्ष्म वतन में उड़ाते रहना है, ज्ञान के ऊंचे ऊंचे सोमानों से उड़ाते रहना है। और क्या बताया, अपनी तपस्या की कमी कहाँ होती है, उसको अपने तपस्या के पोता मेल को देखना है कि क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, कि फुल स्टॉप लगाने के बजाय मैं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क अर्थात एक दो के जीवन को देख के होली अंश बनने के बजाय दूसरे के अवगुणों को देख रहा हूँ। तो दूसरों की विशेषताओं को देखना है। और चार प्रकार की होली, मैं आत्मा बाप की हो गई अर्थात होली, मैं आत्मा होली बन गई, मैं आत्मा उसके रंग में रंग गई, मैं आत्मा सारी कमजोरियों को जलाकर मुक्त हो गई, जैसे स्वतंत्र पंछी विचरण करने वाला, बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाला, समीप रहने वाला और बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे अनेक प्रकार के बाबा महावाक्यों से हमको शक्तिशाली समर्थ बनाते रहते हैं, ताकि हमेशा हम इस ब्राह्मण जीवन का जो सबसे बड़ा वर्षा है कौन सा है, अतीन्द्रिय सुख खुशी, उसकी अनुभूति हम निरंतर करते रहेंगे, तो ये हमको इस ब्राह्मण जीवन का मजा आएगा। ओम शांति।
दुनिया।